यह आकाशवाणी दिल्ली है। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आज से पहली जनवरी 2025 तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देशभर में एथेनॉल जैव ईंधन के 400 पंप स्टेशन लगाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इस महीने में अब तक 13,000 करोड़ रूपये कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आज से पहली जनवरी 2025 तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर भी सख्ती से लागू होगा। इस निर्णय पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पटाखों के प्रतिबंध के निर्णय के पीछे सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली की हवा सांस लेने योग्य बनी रहे।
दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण और जो वितरण है, उसका उपयोग है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे सभी लोगों से अपील है कि हम सब लोगों को जो पॉल्यूशन के सोर्स हैं, हम सब मिलकर के उसको नियंत्रित करेंगे, उतना ही दिल्ली के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी।
श्री राय ने दिल्ली की जनता से प्रदूषण के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई में सहयोग और समर्थन की अपील भी की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एंटी डस्ट अभियान के अंतर्गत आज शहर के पीतमपुरा में खेल परिसर के प्रोजेक्ट स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के बाद श्री राय ने कहा कि निर्माण स्थल पर धूल नियंत्रण से संबंधित अनियमितताएं पाई गई। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि इस संबंध में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्माण कार्य करने वाली कंपनी पर 50,000 रूपये जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर डस्ट कंट्रोल के 14 नियमों को लागू करना जरूरी है और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि अब तेजी के साथ टेम्परेचर जो है वो डाउन होने वाला, तो हवा की गति कम होते ही जो टेम्परेचर डाउन होता है, तो हम पिछले सालों के रिकॉर्ड से देखते हैं कि धीरे धीरे पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जितने पोल्यूशन के कण हैं वो सारे वायुमंडल में फैलने की जगह वो नीचे आ जाते हैं।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शहर में बढ़ते वायु और जल प्रदूषण को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है। श्री सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि आने वाले दिनों में दिवाली और छठ जैसे दो बड़े त्यौहार हैं, लेकिन सरकार शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले 4 दिन में लगभग दुगना हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी इस पर चुप हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से छठ की तैयारियों के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने निर्माण स्थलों पर मच्छरों के प्रजनन से निपटने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। इस अभियान के अंतर्गत एमसीडी अधिकारियों ने सभी 12 जोन में 258 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया, जिसमें 85 स्थलों पर मच्छरों का प्रजनन पाया गया। निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रजनन स्थल पर मौके पर ही नष्ट कर दिया और इस दौरान अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 58 कानूनी नोटिस और 33 अभियोजन भी जारी किए हैं। हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार पार्क में होगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। समारोह की तैयारियों को लेकर पूर्व सांसद और कार्यक्रम प्रभारी संजय भाटिया ने बताया कि प्रधानमंत्री के पंचकुला में आगमन को लेकर बहुत ही उत्साह व खुशी का माहौल है। दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र से निगम पार्षद सरिता फोगाट आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मनीष सिसोदिया ने बताया कि सरिता फोगाट भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी परिवार में वापस आ गई हैं। उन्होंने बताया कि सरिता फोगाट आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आतिशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो दिल्ली के लोगों के कल्याण और विकास के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच सहयोग की आशा करती हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषीय साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे उपभोक्ता के अधिकार और जिम्मेदारी विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे उपस्थित रहेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान श्रोता उपभोक्ता के अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों से संबंधित प्रश्न हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। हैशटैग आस्क AIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देशभर में एथेनॉल जैव ईंधन के 400 पंप स्टेशन लगाए जा रहे हैं। वे आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 ऑटोमोबाइल कंपनियां जल्द ही फ्लैक्स इंजन वाहन बाजार में लाएंगी। श्री गडकरी ने CNG, एथेनॉल और मीथेन जैसे जैव ईंधन को हासिल करने के लिए अपशिष्टों को अलग करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि देश में जैव ईंधन किफायती होगा। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने परंपरागत ईंधन में एथेनॉल मिश्रण की भारत की पहल पर प्रकाश डाला। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आध्यात्मिक गुरु माता निर्मला देवी के जन शताब्दी समारोह के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक स्मारक सिक्के का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की विरासत और धरोहर ने विश्व को सदैव भारत के प्रति आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि माता निर्मला देवी के कार्यों ने मानवता को एक सकारात्मक दिशा दी है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक डॉ VR मणि सहित कई अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इस महीने में अब तक 13,000 करोड़ रूपये कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। दिल्ली पुलिस की कामयाबी पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस को नशीली दवाओं की जब्ती के सफल अभियानों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ अभियान बिना किसी ढील के जारी रहेगा। श्री शाह ने कहा कि सरकार युवाओं को नशीली दवाओं के अभिशाप से बचाकर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मादक पदार्थ का प्रचलन कतई बर्दाश्त न करने की केंद्रीय सरकार की नीति और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई में दिल्ली और गुजरात पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 518 किलोग्राम कोकीन जब्त की है। सूत्रों ने बताया कि संयुक्त कार्रवाई के दौरान कल गुजरात के अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से कोकीन की बरामदगी हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका अनुमानित मूल्य लगभग 5,000 करोड़ रूपये है। इससे पहले इस महीने की 1 तारीख को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने महिपालपुर के एक गोदाम में छापा मारकर 562 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम अफीम बरामद की थी। इस मामले की छानबीन के दौरान 10 अक्टूबर को दिल्ली में रमेश नगर की एक दुकान से 208 किलोग्राम कोकीन भी बरामद की गई। दिल्ली पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के पास से 3,98,000 रूपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आरोपियों के पास से जाली नोट छापने के लिए जरूरी कच्चा माल, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पर पहले भी दूसरे मामलों में केस चल रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली में तैनात एक पटवारी सहित कुल 2 लोगों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। CBI ने बताया है कि आरोपी पटवारी और एक निजी व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से उसके घर के निर्माण से जुड़े मामले को निपटाने के लिए 25,000 रूपये की रिश्वत की मांग की थी। ब्यूरो के अनुसार बातचीत के बाद आरोपी शिकायतकर्ता से 15,000 रूपये की रिश्वत लेने के लिए सहमत हो गए थे। CBI ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। राज्यों की श्रेणी में ओडिशा ने पहला पुरस्कार जीता है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। गुजरात और पुदुचेरी ने संयुक्त रूप से 3रा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 22 तारीख को नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान करेंगी। 9 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित कुल 38 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ साथ कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार भी मिलेगा। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल प्रबंधन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विजेताओं की सराहना की। उन्होंने ये भी बताया कि जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण के बारे में जागरूकता लाने के लिए एक व्यापक अभियान चला रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य वैश्विक रूप से जिम्मेदार और दूरदृष्टि वाले नागरिक तैयार करना है। वे आज नई दिल्ली में अमरीका भारत रणनीतिक साझेदारी मंच द्वारा आयोजित इंडिया लीडरशिप समिट 2024 में बोल रहे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने के लिए आमंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। श्री प्रधान ने कहा कि मंत्रालय अब प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ उनका कौशल बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है। भारत कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा WTSA की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। श्री मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारत एक विश्वस्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित कर चुका है। इस अवसंरचना ने उच्च गुणवत्ता के डिजिटल वित्तीय उत्पादों के विकास में सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि देश अब विश्व के तीसरे महत्वपूर्ण जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्र बन चुका है। यहां 1,40,000 से अधिक स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं। नई दिल्ली में आज RBI एट 90 उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि वैश्विक डिजिटल क्रांति में प्रवेश करने और उसे सुधारने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत के अनुभव का लाभ अन्य देश उठा सकते हैं। डिजिटल मुद्रा के प्रयोग पर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC सीमा पार निर्बाध भुगतान करने की संभावना रखती है। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने थोक बिक्री और खुदरा CBDC दोनों का शुभारंभ किया है। श्री दास ने कहा कि मानकों और अंतर संचालनीयता का सामंजस्य सीमा पार भुगतान में CBDC के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये प्रणाली क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ी गंभीर वित्तीय स्थिरता चिंताओं पर काबू पाने में भी सहायक होगी। और अब मौसम। राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आज से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश भर में इथेनॉल जैव ईंधन के 400 पंप स्टेशन लगाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इस महीने में अब तक 13,000 करोड़ रुपए कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। और आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।